शांति। आज का टॉपिक है निर्भयता की शक्ति। तो निर्भयता एक गुण भी है तो शक्ति भी है। निर्भयता हमारे जो व्यक्तित्व को निखारती है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में उसको इस शक्ति का बहुत विशेष महत्व होता है। तो निर्भय बनने के लिए बाबा ने अनेक युक्तियां बताई है कि आगे ऐसे अनेक सीन आएंगे कि देश का विश्व का माहौल ऐसा हो जाएगा कि भयभीत हो जाएगा। तो भयभीत वातावरण में भी निर्भय कैसे रहे, क्योंकि अंतिम समय का जो सीन है, दृश्य है, उसके लिए हमारी स्थिति एकदम अचल, अडोल और निर्भय होनी चाहिए। तो उसके लिए पूर्व तैयारी क्या करनी है, स्थिति ऐसी निर्भय कैसे बने, उसके लिए बाबा ने बहुत सारी युक्तियां बताई है और हमने सुने भी है। तो जैसे शुरुआत हुई, यज्ञ की शुरुआत हुई, तो यज्ञ की शुरुआत में जब शिव बाबा की पद्रावणि हुई, तो बाबा तो एक साधारण भक्त ही थे उस समय, लेकिन वहां हैदराबाद सिंध में सब बहुत अच्छा मानते थे। लेकिन जब जो शिव बाबा की वाणी चलने लगी और उन्होंने अनेक प्रकार से गीता ज्ञान देना चालू किया, जैसे पवित्र बनो, योगी बनो की शिक्षा देनी आरंभ की, तो उस समय फिर विरोध चालू हो गया। और विरोध का सामना बाबा दादा ब्रह्मा बाबा ने उस समय कैसा किया यज्ञ की शुरुआत में, क्योंकि एकदम उस समय का माहौल एकदम चेंज हो गया था। बाबा के जो सहयोगी थे सब विरोधी बन गए थे। तो उस स्थिति को ऐसे बाबा ने निर्भयता से फेस किया। उसी प्रकार मम्मा ने भी जो कोर्ट में जो केस था उसको निर्भयता से एकदम अपना पक्ष रखा था और उसमें जीत हासिल की थी महिलाओं के अधिकार के लिए। तो मम्मा बाबा ने जो निर्भयता की शक्ति हमें उदाहरण रूप में दी कि कैसे परिस्थिति को फेस करे, उसी प्रकार हमारे जो पूर्वज हुए, दादियां हुई, उन्होंने भी कैसे परिस्थितियों को फेस किया और उन्हीं के कदमों पर कदम रख के हम अभी अनेक परिस्थितियों को फेस कर रहे हैं। हमारे सेंटरों की बहनें, वरिष्ठ बहनें भी, उनके सामने भी अनेक परिस्थिति आती है, लेकिन वो सब एकदम सहजता से फेस कर लेते हैं और अपना जो यज्ञ है एकदम सहज रीति से आगे बढ़ता है, क्योंकि जिसका साथी है स्वयं भगवान, उसको क्या करेगा आंधी तूफान। तो बाबा साथ है तो डरने की क्या बात है। तो बाबा ही सब कुछ करा रहा है, हम तो निमित्त मात्र आत्माएं हैं। तो जैसे भक्ति मार्ग में भी गीता शास्त्र है, उसमें भी जैसे अर्जुन को विषाद हो गया था, माना डिप्रेशन की स्थिति आ गई थी, तो डर का अनुभव हो गया था। पहले उसने तपस्या की, अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र अर्जित कर लिया था, शिव को भी प्रसन्न कर लिया था अस्त्र शस्त्र, और इंद्र को भी प्रसन्न कर लिया था, अनेक अस्त्र जुटा लिए थे, पूरा सुसज्जित था, लेकिन जब मैदान में गया तो डर गया। तो मैदान में जब तो स्थिति पैदा होगी, कौन सी आसक्ति, जिसे मोह कहेंगे, कि जैसे अपने संबंधियों को आगे देखा तो एक प्रकार से मोह हो गया, जैसे उनके दादा काका गुरु सब थे अर्जुन के सामने, और उनको कैसे मारूं मैं, इन्होंने तो मेरे को पढ़ाया पालना की, इनके गोदी में मैं खेला और मैं इन्हीं के ऊपर कैसे अस्त्र शस्त्र चला सकता हूं। तो उस समय उसकी स्थिति मैदान में डावाडोल हो गई। तो फिर श्री कृष्ण कैसे उनको युक्ति से उससे बाहर निकालते हैं। तो बाबा भी, हम ब्राह्मण बच्चों को कभी कभी, कोई कोई बच्चे ऐसी स्थिति में आ जाते हैं तो उन्हें भी फिर दिल से कष्ट हो जाते हैं, तो उनको भी ऐसे अनेक युक्तियां देके बाहर निकालते हैं, निर्भय बनाते हैं। तो जो ये निर्भयता की शक्ति है, वैसे निर्भय माना इसमें भय छुपा हुआ है, भय से ही हमें निर्भय बनना होता है। तो भय ऐसा कोई एक कोई चीज है नहीं, ये तो एक मनोवृत्ति है, जैसे आलस्य अलबेलापन है, उसी प्रकार ये भय भी है, इसको डर भी कहते हैं, भय या डर। तो ये हमारी जो कुछ विशेषताएं हैं अंदर, विशेषताओं को चुरा लेता है, एक प्रकार से एक शत्रु भी है, एक चोर भी है, लुटेरा है, हमारी विशेषताओं को चुरा लेता है, हम जो प्रदर्शन करना चाहते हैं लेकिन वो नहीं कर पाते ये डर के कारण, और हम पीछे रह जाते हैं, हम अपना एक कंफर्ट जोन बना लेते हैं, हाँ उसमें ही सहज रहना चाहते हैं, आगे बढ़ना नहीं चाहते। जैसे स्टूडेंट भी क्लास में आगे बैठते हैं और कोई पीछे बैठते हैं, तो आगे बैठने वाले को थोड़े निडर होते हैं, निर्भय होते हैं, और पीछे वाले थोड़ा वो धारणाओं में कमी होती है, कुछ पूर्व तैयारी कम करते तो पीछे बैठते, अपना कंफर्ट जो बना लेते कि आगे वाले संभालते रहेंगे। तो एक अपना कंफर्ट जो, ऐसा नहीं है लेकिन समझने के लिए, बाहर की दुनिया में भी तो, क्योंकि धारणा थोड़ी कम होती है तो कोई पूछ लेगा टीचर, हम बता नहीं पाएंगे, हाँ संकोच हो जाता है, तो इसलिए अपना कंफर्ट हम बना लेता है और आगे नहीं बढ़ता है। और उसके अंदर भी विशेषताएं होती है, लेकिन वो ये अंदर जो भय होता है या डर होता है, उसके कारण वो वैसे ही रह जाती है, प्रदर्शित नहीं हो पाती, तो इसके कारण हम डर से भयग्रस्त हो जाते हैं। तो डर है कुछ नहीं, लेकिन इसको कैसे समझेंगे, एक कहानी के माध्यम से, काल्पनिक कहानी है, जैसे एक चूहा होता है, चूहा चूहा को डर लगता है बिल्ली से, तो चूहा जाता है एक जादूगर के पास, मैजिशियन के पास, बोलता है कि मुझे बिल्ली से डर लगता है, मुझे बिल्ली जैसा बड़ा बना दो। तो जादूगर उसे बड़ा बना देता है, बिल्ली बना देता है बिल्ली जैसा ही। तो फिर कुछ दिनों के बाद उसे कुत्ते से डर लगने लगता है, तो फिर वो जादूगर के पास जाता है और कहता है कि हमें कुत्ता बना दो, कुत्ते जैसा बना दो। फिर उसको चीते से डर लगता है, कुत्ता बनने के बाद चीता से डर लगता है, चीता उठा ना लेके जाए। तो जादूगर के पास जाता है और कहता है कि मुझे चीता जैसा बड़ा बना दो। तो जादूगर उसे फिर चीता बना देता है। फिर भी उसकी कंप्लेंट रहती है कि नहीं, मुझे तो शिकारी से डर लगता है। तो फिर जादूगर उसे शिकारी भी बना देता है। फिर भी उसकी कंप्लेंट पूरी नहीं होती, तो वो जाता है जादूगर के पास और कहता है मुझे शिकारी बना दो। तो शिकारी बना देता है। फिर शिकारी बनने के बाद फिर भी कंप्लेंट रहती है, तो जादूगर के पास जाता है और कहता है कि मुझे शिकारी जो कहता है कि मुझे बीवी से डर लगता है, शिकारी की जो बीवी होती है बीवी से डर लगता है। तो वो फिर कंप्लेन करता है मुझे बीवी बना दो, मुझे शिकारी नहीं बने रहना है, शिकारी की बीवी बने रहना है। तो उसको बीवी बना देता है, लेकिन फिर भी एक कंप्लेंट रह जाती है उसकी। हाँ, तो घर में चूहे होते हैं, तो बीवी को चूहे से डर लगता है। तो ये साइकिल डर की चलती ही रहती है, माना भय की साइकिल कभी पूरी नहीं होती, फिर उसी जगह आ जाती है। तो भय ऐसी नाम, भय नाम की कोई चीज तो नहीं है, एक मनोवृत्ति है। तो ये भय हम ही अपने मनोवृत्ति के कारण बना लेते हैं। तो भय के भी दो प्रकार होते हैं, जैसे एक वास्तविक भय, वास्तविक माना होता है जिससे भय होना चाहिए, जैसे आग है तो आग से डरना चाहिए, नहीं तो हम जल जाएंगे। बिजली का करंट अगर खुला है तो वहां सावधानी मिली है कि यहाँ 4440 वोल्ट है इससे दूर रहो, तो इसमें डरना भी है। जैसे माउंट में भालू निकलते हैं तो एक चेतावनी दी जाती है कि अकेले नहीं जाओ, तो भालू से भी डरना भी बहुत जरूरी। तो एक वास्तविक डर होना भी चाहिए, इसको फिजिकल फिजिकल फियर भी कहा जाता है। तो ये एक डर होना चाहिए, लेकिन एक दूसरा डर है काल्पनिक डर, इसको साइकोलॉजिकल डर कहते हैं या भय कहते हैं। तो ये एक हमारे मन की कल्पना होती है, और कल्पना से हम वो उसको छोटा रूप होता है लेकिन बड़ा बना लेते हैं, उससे भी हम डर जाते हैं। जैसे कि रस्सी को सांप समझ लेते हैं, एक भ्रम होता है, वास्तविक सांप नहीं होता, लेकिन वो हमारा अवचेतन मन में ऐसा स्टोर हो जाता है कि रस्सी माना सांप, माना कंबाइन कर दिया है। तो ये भ्रम पैदा हो जाता है और हम वो डर जाते हैं उस अचानक की। जैसे गूगल सर्च होता है, तो गूगल सर्च में ये ऑप्शन डालो तो ये के बराबर अनेक ऑप्शन निकल जाते हैं, उसी प्रकार ये सांप स्टोर है अवचेतन मन, तो वो रस्सी को भी सांप समझ लेता है, एकदम फाइल खुल जाती है। तो ये एकदम भ्रम होता है। तो इसके ऊपर भी एक वैज्ञानिक ने रिसर्च किया था कि ये भ्रम कैसे पैदा होता है, हम इसको कैसे मान लेते हैं। तो उन्होंने एक कुत्ता के ऊपर प्रयोग किया, कुत्ता को बांध के रखा था, लेकिन उसके सामने वो भोजन ला के रखता था। तो भोजन लाते ही कुत्ते को एकदम खाने की इच्छा होती थी और उसका लार टपकने लगता था, लेकिन वो बंधा हुआ था, इसके कारण वो भोजन को प्राप्त नहीं कर पाता था। फिर उसने भोजन को हटाया, दूसरा प्रयोग किया, एक बेल होती है, घंटी बजाना चालू किया, तो घंटी बजाने से कोई रिएक्शन नहीं करता था कुत्ता, क्योंकि कोई लार वगैरह नहीं टपकती थी। भोजन होता तो लार टपकती थी स्लाइवा, लेकिन जब घंटी बजाता था तो कोई रिएक्शन नहीं होता था। तो फिर तीसरा प्रयोग किया उसने कि घंटी भी बजाया और उसके साथ साथ भोजन भी लाया, दोनों एक साथ किया, तीसरा जो प्रयोग किया, तो उसका लार टपकने लगा, फिर स्लाइवा टपकने लगा, खाने की इच्छा होने लगी। तो फिर ऐसा कई दिन तक ऐसा प्रयोग करने के बाद वो उसका अभ्यास हो गया था कि घंटी बजी वाना खाना आया ही आया। तो फिर चौथा प्रयोग किया उसने कि सिर पर घंटी बजाता था, खाना नहीं लाता था, तो घंटी बजाते ही उसको लार आ जाती थी, क्योंकि उसके अवचेतन मन में स्टोर हो गया था। दूसरा प्रयोग हमने देखा कि घंटी बजा था तो कोई रिएक्शन नहीं था, न्यूट्रल था, लेकिन अभी चौथा प्रयोग में क्या हो गया कि घंटी बजाने से ही लार उसकी टपक रही है। तो ये हमारे ऊपर भी लागू हो जाता है, मनुष्य आत्माओं के ऊपर। कैसे कि जैसे दो दोस्त थे, अच्छे हट्टे कट्टे जिम में जाते थे, और दो दोस्त में से एक दोस्त की अचानक किसी कारण से डेथ हो जाती है, फिर दूसरा दोस्त तो वो अपने साथी को खोकर वो सोचते रहता है कि ये तो मेरे से भी अच्छा था और मैं तो इससे भी कमजोर था, फिर भी इसकी डेथ हो गई, तो वो अपने ऊपर लेने लगा, उसका कंबाइन अपने साथ जोड़ लिया उसने कि मेरा भी तो ऐसा ना हो जाए। भले वो जिम करता था, लेकिन वो ये इसी चिंतन में रहने लगा, और चिंतन करते करते वो चिंता रूप ले लिया, और चिंता आने से डर आ गया, और डर से उसके अवचेतन मन में बैठ गया। तो जो दोस्त के जो मृत्यु होगी, पहले तो होगी थी, लेकिन ये भी उसी ग्रस्त के भय के कारण या चिंतन के कारण वो भी मृत्यु को पा लेता है एक दिन। तो दूसरे की जो इसी जो है उसको साथ जोड़ लेते हम, माना कंडक्ट कर लेते हैं। पहले जैसे कुत्ता पहले बेल पर कोई रिएक्शन नहीं करता था, लेकिन जब भोजन और बेल कंबाइन कर दिया तो रिएक्शन होने लगा। उसी प्रकार हम भी अगर दूसरे की कमजोरी है, दूसरे की से तुलना करना चालू कर देते हैं कि इनमें इनके कारण ऐसी घटना हो गई, कहीं ये घटना मेरे साथ न हो जाए, तो दूसरों की घटना भी हमारे अंदर आ जाती है और हम उसके शिकार हो जाते हैं। इसको भी साइंटिस्ट ने आकर्षण का सिद्धांत कहा है कि जो भी सोचते हैं हम वो हमारे अंदर आ जाता है, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। तो ये आकर्षण का सिद्धांत भी यहाँ काम कर लेता है और हम डर के शिकार हो जाते हैं। तो जैसे अभी महामारी हुई थी, कौन सी चल रही है, कोरोना वायरस, तो हाँ कोरोना, तो ये है तो वायरस, लेकिन इसका क्या है, हम इससे जैसे दूसरों को हो गया तो हम इमेजिन थोड़ा डर के कारण अंदर थोड़ा डर हो ही जाता है, स्वाभाविक है, डर होना भी चाहिए, लेकिन वो डर से अंदर नहीं लेना चाहिए। हाँ तो कुछ सावधानी है, उसको पालन करते हैं तो वो हमारे अंदर नहीं आता, लेकिन हम उसके साथ जोड़ लेते हैं, दूसरों को कोरोना हो गया तो मेरे को भी ना हो जाए, थोड़े भी हमारे अंदर लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे गला खराब हो गया तो ये मेरे को कोरोना तो नहीं हो गया, तो ये हम जोड़ लेते हैं उसके साथ और वो आकर्षित कर लेते हैं, वो जल्दी हो जाता है, भले थोड़ा हो जाता है, लेकिन हम उस पर जैसे 25 लोगों को होना था लेकिन 50 लोगों को हो जाता है। हाँ तो वो वायरस तो है और होता है, लेकिन तू सावधानियां उसके साथ जोड़ लेते हैं जो कमियां हैं और वो हमारे अंदर आ जाती है। तो जैसे एक इसके ऊपर एक कहानी है कि एक यमराज जा रहे थे किसी गांव में, मृत्यु उसको ऑर्डर था धर्मराज से कि इनके इस गांव से इतनी 500 की संख्या लानी है। हाँ गांव का तो साधु होता है वो पूछ लेता है यमराज से कि आप ये जो कुछ महामारी या कोई तूफान लेके क्यों जा रहे हो। तो वो बोलता है कि मुझे ऑर्डर मिला है 500 लोगों की संख्या लानी है और मैं जा रहा हूँ। तो वो जाता है उस गांव में और 500 लोग लेके फिर रिटर्न जाता है। तो फिर वो साधु उनसे पूछता है आपने तो 500 बोला था, ये आपके साथ तो 1000 लोग हैं, तो ऐसे झूठ क्यों बोला है आप। नहीं नहीं मैं तो 500 ही लिया, ये आधे 500 तो ये भय के कारण मर गए या भय के कारण अपना शरीर छोड़ दिए। तो ये कहानी भी एक भय के कारण हो जाती है कि तो एक कहानी है कि होता है छोटा रूप लेकिन हम अपने साथ उसको जोड़ लेते हैं। तो ये फिर अनेक वो जो दूसरी की कमियां हमारे अंदर आ जाती है, हम भय से ग्रसित हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये डर का साइकिल चलता है। माना इस पर एक रियल घटना भी बताई जाती है कि एक कैदी था और उसको फांसी की सजा होने वाली थी। तो जो जेलर हो उन्होंने उसको कन्फर्माइज किया कि नहीं आपको फांसी तो होनी है, अटल है, तो आप हमें सहयोग दो, कुछ हम प्रयोग करना चाहते हैं। उसको कन्फर्माइज किया आप हम फांसी नहीं देंगे, हम आपको एक सांप से कटवा देंगे। तो वो कैदी चलो मरना तो है मैं तैयार हूं, तो वो उसी तैयारी में रहता है मुझे तो सांप से सांप के द्वारा मेरी मौत होनी है। वो पूरा मतलब सेट कर लेता है अपने माइंड में फांसी तो नहीं होगी लेकिन सांप के द्वारा भी मैं अभी मरने के लिए तैयार हूं। तो जब समय आता है जो घड़ी होती है वो पल पल गिनता है कि मैं ये समय मेरे को सांप काट से कटवाया जाएगा। और उसी समय उसके जब घड़ी आ जाती है तो मुंह पर कपड़ा डाल दिया जाता है और उसे कमेंट्री दी जाती है कि अभी हम आपको सांप से कटवा देंगे, आप रेडी हो। बोलता है रेडी और उसको सुई चुबा दिया जाता है, इसी दो कंबाइन सुई। तो उसको लगता है कि मुझे सांप ने काट दिया और वो अनुभव करता है मैं कि मेरे शरीर में पूरा जहर फैल रहा है और मैं अभी जहर से मर जाऊंगा। हाँ तो और वो सचमुच में मर जाता है जबकि उसको सांप से नहीं काटा गया, सुई चुभेगी सिर्फ। तो उसने उसके अंदर वो केमिकल रिलीज हो गए कि उसने अपने अवचेतन मन में आकर्षित कर लिया कि मुझे सांप से कटवाया जाएगा और तो ये केमिकल हमारे अंदर रिलीज हो जाते हैं। तो ये सिद्धांत हमारे ऊपर भी लागू हो जाता है कि हम कोई भी कमी कमजोरी ले लेते हैं या कोई बीमारी तो उसके जो हमारे अंदर वो बॉडी केमिकल रिलीज करती है और हम उसके ग्रसित हो जाते हैं। तो ये डर या भय ये इतना भयावह है, हमें लगता नहीं है, इसकी जानकारी न होने के कारण हम इससे अज्ञान में रहते हैं। तो ये एक उदाहरण था। तो डर आने के कारण, तो डर सबसे मनुष्य को कौन सा डर लगता है? मरने का डर, मृत्यु का डर। मृत्यु का डर सबसे ज्यादा लगता है। ये तो कीड़े मकोड़े को भी होता है, जानवरों को भी होता है मृत्यु का डर। तो मृत्यु माना एक ऐसा ये अखंड मतलब ये है जो जन्म लिया जिसने उसको मृत्यु होना ही है, ये अटल सत्य है, शाश्वत सत्य है, सबको पता भी है कि हमको जाना है फिर भी हम डरते हैं। हाँ, तो डर क्यों होता है, भय क्यों होता है? क्योंकि हमें इसकी मना जानकारी नहीं है हम। लेकिन हम ब्राह्मणों को डर होता है? ब्राह्मणों को भी मृत्यु का डर होता है? बाबा डायमंड हॉल में पूछा था एक बार, अभी सब एव रेडी चले, तो सबने हाथ उठवा दिया। लेकिन वो अंदर में एक संकल्प आता है, हम तो अभी एव रेडी बने नहीं है, हमारी सेवा तो अभी पूरी हुई नहीं है, हम कभी कब ऐसे चलेंगे। हाँ, पुरुषार्थ बाकी है, अभी संपूर्ण बने नहीं है। अगर अभी शरीर छूट जाएगा तो कैसे बनेंगे? फिर दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, फिर बच्चे, फिर आर्गन छोटे, और पुरुषार्थ कैसा कर पाएंगे? तो ये एक संकल्प आता है, तो वो एक गवाह देता है कि अभी नहीं, अभी थोड़ा समय और दो, चांस दो। तो ये भी है। लेकिन हम ब्राह्मणों को वो डर नहीं है मरने का, कि अगर कुछ हो भी गया, क्योंकि आत्माभिमानी बन गए, आत्मा का ज्ञान होने के कारण, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, ये ज्ञान होने के कारण हम त्रिकालदर्शी बन जाते हैं 84 जन्मों का। तो ये मृत्यु का उतना डर नहीं रहता जो अज्ञानी मनुष्य आत्माओं को होता है। तो ये मृत्यु का डर पहला होता है मनुष्य में। फिर दूसरा है जो कोई असफल न हो जाए, दूसरा डर है कि असफल होने का डर हर मनुष्य में होता है। जैसे स्टूडेंट होता है उसको फेल न हो जाए परीक्षा में, वो डर रहता है। लेकिन कोई स्टूडेंट नहीं डरते जिन्होंने की पूर्व तैयारी की हुई है, जो तैयार होके जाता है परीक्षा हाल में, तो वो तो निडर होके अपना एकदम पेपर सवाल कर लेता है। और दूसरा जैसे व्यापारी लोग हैं, वो भी डरते हैं असफल होने से, माना कोई व्यापार में घाटा न हो जाए। या कोई शेयर होल्डर होते हैं, वो बोलते शेयर गिर ना जाए, इसलिए वो डरते हैं। तो ये डर तो बना ही रहता है, बैंक बैलेंस का जो खत्म ना हो जाए, चोर लूट ना जाए, तो ये डर सभी में होता है। तो ये एक असफल होने का एक डर बना हुआ रहता है। फिर तीसरा है अपना जो अस्तित्व है वो खो जाने का डर। अस्तित्व माना कोई अभी पोजीशन मिली हुई है, तो वो जैसे मिनिस्टर लोग होते हैं, तो वो उनकी सीट खो ना जाए उसको डर रहता है। तो वो बनाए रखने के लिए कोई भी अपना युक्ति निकालते रहते हैं। तो ये एक डर बना हुआ रहता है अपना जो पोजीशन बनी हुई है कोई भी अभी, तो वो खो ना जाए, ये डर मनुष्य आत्मा में होता है। फिर हो जाए कि अज्ञात डर। अज्ञात माना कि माना कभी भी आ जाता है आकस्मिक अचानक। तो इसमें जैसे भूकंप हो जाता है, नेचुरल कैलेमिटीज हो जाती है, या फिर फसल कोई बर्बाद हो जाती है, किसान लोग इससे डरे हुए रहते हैं, या फिर ऐसे अचानक कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो डर माना बना हुआ रहता है। तो ये एक है ये जो डर है, आकस्मिक अज्ञात डर। फिर है जैसे अवचेतन मन का डर, अवचेतन मन से संबंधित डर। क्योंकि किसी किसी को पानी से डर लगता है। पानी से डर लगने का कारण कि हो सकता है कि पूर्व जन्म में वो उसकी मृत्यु डूबने से हुई हो, पानी में डूबने से। तो वो अभी भी इस जन्म में कोई पानी से डरते हैं, क्योंकि वो मेमोरी स्टोर में है। कोई आग से डरते हैं, कोई एक्सीडेंट से डरते हैं, तो कोई वाहनों से डरते हैं एक्सीडेंट ना हो जाए। तो ये अवचेतन, कोई पेड़ से गिर जाते हैं और अचानक मृत्यु हो जाती है, तो पेड़ से चढ़ने से भी डरते हैं कि गिर ना जाऊं। तो ये कुछ स्मृतियां होती है पूर्व जन्म की अवचेतन मन में स्टोर, तो इसके कारण भी हमें डर लगता है। फिर है आत्मविश्वास की कमी के कारण डर। हमारे अंदर आत्मविश्वास कमी होता है, हम जो कर रहे हैं उस पर हम खुद की गवाही नहीं होती कि संशय रहता है कि मैं जो कर रहा हूं ये सच माना सफल होगा या नहीं होगा, तो एक आत्मविश्वास की कमी होती है, उसके कारण भी डर होता है। फिर है अकेले रहने का डर, अकेले में भय रहता है, अंधेरे से डर जाते हैं या कोई कुछ काकरोच से डर लगता है, छिपकली से डर लगता है, चूहे से डर लगता है, तो ये अकेले में भूतों से डर लगता है ना, भूत अकेले में अंधेरे में, तो ये डर होता है, अकेलेपन से डर आ जाता है। तो डर तो वैसे हमने परिभाषा देखी, डर है नहीं, लेकिन वो भ्रम के कारण हम डर जाते हैं, तो ऐसे अनेक डर है। फिर है जैसे कोई बुरा कर्म करता है तो उसको डर रहता है कि कहीं पकड़ा ना जाओ, बुरा कर्म करने वालों को भी डर रहता है। फिर झूठ बोलते हैं उनको भी डर रहता है, कभी झूठ हमारा प्रकट न हो जाए। हाँ, भंडा फोड़ना हो, हाँ, एक झूठ अगर बोला तो उसको 100 झूठ बनाने बहाने बनाने पड़ते। हाँ तो ऐसे झूठ की माला बनती रहती है और वो एक झूठ से अनेक झूठ के तरीके बनाते रहता है। तो इस प्रकार जैसे कोई रिश्वत लेता है तो उसके लिए फिर उसको दबाने के लिए फिर अनेक झूठ तैयार करता है, तो ऐसे झूठ वालों को भी डर रहता है। फिर शत्रु से भी डर, अगली पॉइंट है शत्रु से डर लगता है, हम तो शक्तिशाली हैं लेकिन जो हमारा जो शत्रु है वो और भी शक्तिशाली हो सकता है, वो डर रहता है, तो इस शत्रु से भी डर रहता है। फिर है विनाश का डर, विनाश न हो जाए तो इसमें संपत्ति खो जाने का डर रहता है, अपने संबंधी खो जाने का डर रहता है, कोई अलौकिक रिश्तेदार खो जाने का, तो ये ऐसे डर होते हैं। हाँ, बीमारी का डर, हाँ, बुढ़ापा आने का डर, तो ऐसे अनेक डर होते हैं। तो डरों के कारण मनुष्य मन एकदम भयभीत रहता है, आतंकित रहता है। तो ये जो डर है, इन डर को भगाने के लिए हमें कुछ युक्तियां, या जैसे डर का अभी हम कारण समझे, कोई चीजों से डर आता है या कोई घटनाओं से, उसी प्रकार इसका निवारण भी है, डर को कैसे खत्म करें। तो ब्राह्मण परिवार में भी डर होता ही है, कई कई ऐसी घटनाएं हम सुन लेते हैं कि सभी अच्छे से ज्ञान में चल रहे हैं लेकिन बाप दादा से भी मिले हैं, लेकिन कोई कोई ऐसे आकस्मिक घटना के कारण कोई फेल हो जाते हैं, डर के कारण ऐसी घटनाएं सुनने में मिलती है। तो ये क्या होता है कि हमारे अंदर जो कुछ घटनाएं हैं उसको हम बढ़ा देते हैं, छोटी होती है छोटी घटना लेकिन उसको चिंतन करके चिंता में परिवर्तन कर देते हैं, और चिंता से हमारे अंदर डर के कारण हम उस घटना को अंजाम दे देते हैं और हम अपने आप को ही मतलब एकदम किनारा कर लेते हैं, माना इस संगठन से ही दूर हो जाते हैं। तो ऐसी घटनाएं होती है हम ब्राह्मण परिवार में, तो क्योंकि ये एक अंदर अवचेतन मन में बैठा हुआ डर होता है, या लेकिन ये इससे भी हम बाप दादा ने युक्तियां भी ढेर सारी बताई है मुरलियों में, लेकिन हम इस पर नजरअंदाज कर देते हैं। तो पहली जो युक्ति है भय से निवृत्त होने की, कि कोई भी जो हमारे अंदर भय है उनकी पहले लिस्ट बना लिया जाए कि मेरे अंदर कौन से भय है, मैं किस कारण से डरता हूं, तो वो अगर लिस्ट अगर बना ली जाए तो वो हमें स्मृति रहेगी, हाँ ये इसके कारण मेरी स्थिति अचल अडोल नहीं रह पाती, मैं निर्भय नहीं रह पाता। तो ये अगर हमारे अंदर हम पहचान लेते हैं, ना महसूस कर लेते हैं कि ये हमारे अंदर कमी है, तो ये कमी हमें पता चल गई कि ये कमी है, तो उसको फिर कैसे ढूंढ के माना निवारण करें। तो इसके लिए एक युक्ति ऐसी जो साइंटिस्ट लोग देते, जो मनोवैज्ञानिक जो होते फिलोसोफर, वो कहते हैं कि एक हमारी जो कमी है उसको आप अकेले में एक एकांत स्थान में जाओ और या पहाड़ी पर जाओ या कोई मैदान में जाओ, वहां एक स्क्रीन लगा दो कांच का बड़ा सा, और उसमें वो कमी को प्रकट करो, मेरे अंदर ये जो कमी है, और उस कमी को दृढ़ संकल्प करो कि इसको मुझे इससे मुक्त होना है, और उस जो स्क्रीन पर जो कमी दिख रही है उसको एक इमेजिन करो कि ये मेरी कमी है और मैं इसको सदा के लिए हटा देता हूं। तो एक हथौड़ा लो बहुत बड़ा सा और उस स्क्रीन को तोड़ दो तो स्क्रीन तोड़ दो तो वो सदा के लिए उस समय से खत्म हो जाना चाहिए। तो इसी युक्ति को हम अमृत वेले बाप दादा के सम्मुख इमेजिन करके हथौड़ा तो नहीं लेकिन एकदम दृढ़ संकल्प के साथ कि बाबा मेरे में एक कमी आए, मैं आज से दृढ़ संकल्प के साथ, दृढ़ संकल्प का हथौड़ा दृढ़ता का हथौड़ा लेके इस कमी कमजोरी को ये कमी को सदा के लिए एकदम दृढ़ता के हैमर से हटा तोड़ देना है, तो ये कमी कमजोरी हमारी चले जाएंगी, हमारा डर है जो भय है वो चला जाएगा। फिर दूसरा है आत्मविश्वास बढ़ाना पड़ेगा। तो आत्मविश्वास बढ़ाने की जो युक्तियां हैं वो हमें मुरलियों में प्रतिदिन मिलती है, तो बाप दादा की जो बनाई हुई दिनचर्या है उस पर अगर हम एकदम एक्यूरेट है तो आत्मविश्वास बना रहता है। अगर थोड़ा भी कुछ मिस कर देते तो फिर हमारा मन खाते रहता है और फिर कहता है कि मन अंदर से गवाही देता है कि आज कुछ मिस हो गया, ये मेरी कमी है, और इसी के कारण हमारा आत्मविश्वास थोड़ा कमजोर हो जाता है क्योंकि श्रीमत पर न चलने के कारण। तो श्रीमत पर अगर हम चलते हैं, अपने आप को संतुष्ट रखते हैं, ब्राह्मण परिवार को संतुष्ट रखते हैं, तो ये हमारा आत्मविश्वास बना रहता है। फिर तीसरा है सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच बहुत जरूरी है। तो सकारात्मक सोच तो हमें रोज मुरली में मिलती ही है। तो कुछ ऐसे कुछ पॉइंट्स हम बना लेनी चाहिए कि सकारात्मक जो सोच है बनी रहे। तो पहली जैसी है, हर पल हर क्षण मैं एकदम सफल आत्मा हूं, सफलता मूर्त आत्मा हूं। फिर दूसरा कोई आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। फिर तीसरी पॉइंट कि मैं विजयी आत्मा हूं, और इस प्रकार से आप अपनी सोच बना सकते हैं और वो रिवाइज करेंगे तो फिर माना वो दृढ़ता से आती रहेगी, सकारात्मक सोच बनी रहेगी। कोई भी नकारात्मक अगर दृष्टि देख लेते या दृष्टि पड़ जाती है तो उसको भी हम सकारात्मक दृष्टि से देखें, तो ये नकारात्मक को सकारात्मक परिवर्तन करने की भी कला हमारे अंदर आ जानी चाहिए। तो ये निगेटिव को पॉजिटिव। फिर और अगली है कि सम्मान का अभ्यास। तो बाप दादा ने तो अनेक प्रकार के सम्मान दिए, तो सबसे जो मुख्य सम्मान है हमारे जो डर को भगाने का मास्टर सर्वशक्तिमान माना, इसमें सभी शक्तियां आ जाती है, अष्ट शक्तियों के साथ साथ जो भी सहयोगी शक्तियाँ हैं, जैसे आज हम ले रहे हैं निर्भयता की शक्ति, तो इसमें अनेक शक्तियाँ, एकाग्रता की शक्ति, सत्यता की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, मनसा शक्ति, वाचा शक्ति, तो ये अनेक शक्तियाँ, सहयोगी शक्तियाँ, ये भी हमारे अंदर आ जाती है। तो मास्टर सर्वशक्तिवान, सर्वशक्तियों से संपन्न, जैसे बाबा है वैसे मैं भी हूं, तो ये सम्मान अगर ले लेते हैं तो हम निर्भय बन जाते हैं, भय से मुक्त बन जाते हैं। फिर दूसरा सम्मान जैसे ले सकते हैं, महावीर आत्मा हो, महावीर समझने से एकदम बल आ जाते हैं, हाँ गदा लिए हुए, हाँ भक्त, हाँ महावीर तो महावीर आत्मा हो, तो भक्ति मार्ग में भी जो डर कब भगाने के लिए जो मंत्र देते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ो, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो कोई भूत पिशाच निकट नहीं आएंगे, तो ये या ताबीज ऐसा देते हैं कि वो डर नहीं आता, वो स्मृति रहती है, ताबीज में कुछ नहीं होता है, वो बोलते कि ये फल ऐसा मंत्र भर देते, लेकिन वो उसको हम जोड़ देते हैं अवचेतन मन से कि मेरे पास तो है, हाँ ताबीज है, मेरा कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता, तो वो सकारात्मक पॉइंट चलता रहते हैं। तो हाँ भक्ति मार्ग में नींबू रखते हैं या मिर्ची, नींबू मिर्ची का जो एक धागा में बांधा है, तो अनेक टोटके यूज करते हैं, अनेक मंत्र दिए जाते हैं, तो अनेक प्रकार की विधियां हैं। तो उसी प्रकार बाप दादा ने पहली विधि तो हमें दे दिए, मनमाना भाव का मंत्र एकदम मामेकम याद करो। तो ऐसे हम सोमान का अभ्यास करते हैं तो हम जो भी छोटे छोटे भय या चिंताएं हैं उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। फिर दूसरा है भय लगने का कारण, हमारा अगर शरीर थोड़ा कमजोर है तो कमजोरी के कारण भी डर लगता है, तो इसके लिए कुछ हठयोग का भी हम सहारा ले सकते हैं। हठयोग में जैसे प्राणायाम है या कुछ एक्सरसाइज है तन दुरुस्ती के लिए, बहुत जरूरी है वर्तमान समय के अनुसार, क्योंकि हमारा जो खान पान है शुद्ध तो होता ही है, लेकिन केमिकल होता है जैसे सब्जियों में, तो वो केमिकल हमारे बॉडी पर इफेक्ट करता है, हम और कुछ बीमारियों को आह्वान कर माना आ जाती है, तो उसको निपटने के लिए ये तन की एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है। तो जो इसको बोलते हैं इम्यूनिटी पावर, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए एक तो प्राणायाम और हाँ प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए ये भी बहुत जरूरी है। तो ये अगर हम करते हैं तो भी हम कोई भी बीमारी से नहीं डरते, माना मजबूत रहते हैं। और मन की एक्सरसाइज, मन की एक्सरसाइज तो बाप दादा ने बताई है, अभी अभी साकारी, अभी अभी निराकारी, अभी अभी आकारी, तो ये मन की एक्सरसाइज, मन को तंदुरुस्त रखने से। और जो दिन भर जैसे पॉजिटिव सोच के लिए दिन भर बाबा ने जो दिनचर्या बनाई है कि 12 बार या 24 बार असरी बनने की एक्सरसाइज करो, कई मुरलियों में है ये अभ्यास की रिपीट करते रहो, तो हमारा जो बॉडी में जो केमिकल होंगे पॉजिटिव आएंगे और कोई भी निगेटिव तत्व हमें आकर्षित नहीं कर सकता। तो ये तन की एक्सरसाइज और मन की एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। ही रहे हम प्रकृति को सकाश दें, क्योंकि ये जो बीमारी जो आने के कारण, आने का कारण यही होती है कि हम प्रकृति के साथ जुड़े नहीं रहते, क्योंकि हमारा शरीर कैसे बना है, पंच तत्वों से बना हुआ है शरीर, माना प्रकृति, तो प्रकृति से हमें जुड़े रहना बहुत जरूरी है। तो प्रकृति के जो तत्व अभी तमो प्रधान हो गए हैं, तो हमें इन्हें फिर से सत्व प्रधान बनने के लिए हमें उन्हें सकाश देनी पड़ेगी। अगर सकाश देते तो हमारे जो जो प्रकृति के तत्व है वो हमें सहयोगी बन जाते हैं और हमें मदद करते हैं। तो प्रकृति से जुड़े भी रहना है और उनको सकाश भी देना है, तो ये हम तंदुरुस्त रह सकते हैं और हमारा डर खत्म हो जाता है। फिर है ये जो जैसे पहले बताया गया कि अर्जुन को विषाद हो गया या मोह हो गया, मोह के कारण विषाद हो गया, माना टेंशन डिप्रेशन हो गया, डर हो गया, तो इस ये एक आसक्ति है और आसक्ति के लिए चाहिए वेद की वैराग्य वृत्ति। तो हम अगर अपने जीवन में वेद की वैराग्य वृत्ति लाते हैं, वस्तु व्यक्ति और वैभव इनसे डिटैच रहते हैं, तो भी हम हमारे अंदर वो डर कम हो जाता है, भय कम हो जाता है, क्योंकि हमें स्मृति रहती है कि हमारा यहाँ सब कुछ भी नहीं है, हमको तो खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है, सिर्फ हमें दिव्य गुणों की और शक्तियों की गठरी बांधनी है, संस्कारों को साथ ले जाना है, तो संस्कार हमें धारण करने, बाकी जो स्थूल चीजें है वो साथ नहीं जाने वाली है, सूक्ष्म शक्तियां और गुण ही हमारे साथ जाने हैं। तो इस प्रकार हमें बेरत की वैराग्य उठती रखते हैं तो भी हम भय पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। फिर लास्ट है मेडिटेशन। बाहर की दुनिया में भी जो फिलासफर होते हैं वो कोई डरता है तो उसको मेडिटेशन करने की सलाह देता है, जो स्कॉलर होते हैं तो वो सभी को मेडिटेशन करने की सलाह देते, लेकिन वो मेडिटेशन वो ध्यान कहते, लेकिन वो उनको एकदम प्रॉपर पता नहीं होता है, वो तो आंखें बंद करके एकदम कोई इष्ट देवता को याद करते हैं या कोई अपने अपना ही मना मस्तिष्क के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं। लेकिन हमारा मेडिटेशन माना राजयोग, एकदम डायरेक्ट सुप्रीम पावर से कनेक्शन, तो राजयोग का मेडिटेशन ये है सबसे भारत का प्राचीन राजयोग, स्वयं योगेश्वर बाबा हमें सिखा रहे। तो अगर हम प्रॉपर रीति से मेडिटेशन करते हैं, और बाबा ने इसको तो एकदम सहज कर दिया, मुझे याद करो, योग शब्द यूज ही नहीं करो, याद करो बस, तो याद बाप से लगी रहे तो कोई डर नहीं, क्योंकि बाबा कंबाइन है, बाबा साथ साथ चलते हैं, संग संग रहते हैं, यानी दिनचर्या ही साथ में है, बाबा के साथ है, तो योग लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है, तो साथ साथ रहने के साथ हमारा डर भय और सब खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार डर को डराना है, डर से डरना नहीं है, हाँ, तो डर को डराना है, डर से डरना नहीं है। तो इस प्रकार ये हम जैसे देखा कि भय या डर हमारे ब्राह्मण जीवन में कितना बाधा उत्पन्न करता है, और डर के कारण हमारे अंदर जो कुछ विशेषताएं हैं हम उसको प्रदर्शित नहीं कर पाते, और तो ये हम अपनी जो कमी कमजोरी है उसी के कारण ये डर या भय आता है। तो इसकी लिस्ट बनाकर हम इसको प्रत्यक्ष कर हमें इस डर को खत्म करना है। और एक डर होता है जो भाषण करने वालों को प्रैक्टिकल अनुभव की बात है तो स्टेज फियर, तो जब भी भाषण करने जाते तो थोड़ा डर तो रहता ही है कि हाँ पॉइंट ना भूल जाओ तो ये सबसे बड़ा डर शायद हम ब्राह्मणों में है, और इसी के कारण हम आगे आ नहीं पाते, आगे बढ़ने में संकोच करते हैं, और कोई किसी को भी अगर स्टेज पर बुलाया जाए और आपको 2 मिनट दिया जाए, लेकिन सब कहते नहीं नहीं इसमें नहीं जाना है हमें, क्योंकि वो हमें अंदर एक प्रकार से डर बैठा हुआ है कि कभी हम असफल न हो जाए उसको। हाँ, लोग क्या कहेंगे, लोकलाज का डर ये होता है। हाँ, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो ये हाँ तो ये डर सबसे हम ब्राह्मणों में है, और हम प्रैक्टिकल में इसको डर को निकालने की कोशिश में है। कोशिश जारी है, क्योंकि इसी के कारण हम थोड़ा पीछे रह जाते हैं। तो हाँ, रिसर्च जारी है। तो ये जो डर है स्टेज फियर, लेकिन जब इसकी युक्तियां भी है कि हमें युक्तियां पता है, लेकिन हम अंदर से तैयार नहीं होते। हाँ, कुछ टाइम पे काम, जैसे वहां बता जाता है कि स्टेज पर चले जाओ और निर्भय होके जो भी पब्लिक है या ऑडियंस है उनको समझो कि इनको कुछ नहीं आता, बुद्धू बैठे और फिर अपना ज्ञान देना चालू करो, और उनका कॉन्फिडेंस से ध्यान करो और आंखें में आंखें डालकर बात करो। तो ये स्टेज है वो खत्म हो जाएगा, और भीड़ नहीं देखो, एक एकदम कुछ नया सीखने वाले हैं, ऑडियंस है, श्रोता है, इस उद्देश्य से देखो तो फिर ये डर खत्म हो जाता है। तो ये एक भाषण करने वालों को डर होता है, और ये डर से हमें जब हम प्रदर्शन करते हैं तो इसके लिए एक प्रैक्टिस भी है कि हम कैसे करें। तो मोबाइल का साथ लेके, भले हम सभी कहते हैं ना कि भाषण किसी का फोन आ गया तो बात करते हैं, लेकिन आप अपने मन से ही बातें करो, मोबाइल लेके बात कर रहे हो लेकिन दूसरों को लगे कि कोई दूसरे से बात कर रहे हैं। हाँ, लेकिन ये भाषण करने की प्रैक्टिस हम कर सकते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा प्रयोग किया था, अपने आप ही बातें करो लेकिन दूसरों को लग रहा है कि ये किसी से बात कर रहा है। तो ये एक युक्ति है कि भाषण अपने अंदर का जो एक डर भगाने के लिए, तो इस प्रकार से। हाँ, तो कोई कोई ये युक्तियां रस्ते, तो ऐसी अनेक जो विधियां हैं हम तैयार कर सकते ये डर को भगाने के लिए। हाँ, आईने के सामने, हाँ उसमें हमारे, हाँ तो आईने के सामने ये इफेक्टिव होता है, क्योंकि इसमें हमारे आंखें दिखाई देती है, मुंह दिखाई देता है, और हाँ कि हम कहाँ कहाँ गलतियां कर रहे हैं तो वो हमें पता चल जाता है, और हम ये भाषण करने की कला सीख सकते हैं, और हम इस प्रकार से हम डर को भगा सकते हैं। डर कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन हम बड़ा बना लेते हैं अपनी नकारात्मक सोच से, तो सकारात्मक सोच से हम इसको दूर कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।
सोचो मैं भंवरों की तरह, झूमों में लहरों की तरह, चमकू में जुगनू की तरह, मुस्कान में फूलों की तरह, मेरी यादों में रहते हैं बाबा, मेरी यादों में रहते हैं बाबा, जैसे सावन में नींद बरसता है, बरसता है
मेरे संग।